हरे कृष्ण। लंका में छुरी और क्या क्या लेके, अब कल तक समाप्त होना चाहिए था वो लंका का कांड, लंका का युद्ध। आज तो शांति का दिवस, आज हम राम विजय उत्सव मनाने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। बड़ा ही पावन दिवस है। उस विजय उत्सव का सारा मांगल्य का अनुभव आज वैसे वही दिवस है। आज के दिवस में भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं। आज का दिवस उससे, उस दिवस से भिन्न नहीं है, वही दिवस है। अगर हम भूत काल को भेंट दे सकते हैं तो पीछे भूतकाल में जाते जाते हमको 9 लाख वर्ष पूर्व का आज का जो दिन है, वहां तक अगर हम पहुंच सकते हैं। वैसे आज का दिन वही दिन है, तो अभिन्न है वो दिन, राम विजय दशमी। आज दशमी है। उस दिन भी कौन सी तिथि थी? दशमी थी, महीना वही था। और स्थान श्रीलंका। अगर हम पुणे में बैठे हैं, अगर उस दिन का अगर हम स्मरण कर सकते हैं, जिस स्मरण हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हम भी वही पहुंच जाएंगे जहां श्री राम उस दिन थे या आज यहां है। जो भी दूरी है या जो फैसला है उसको मिटाता है ये दिन, या इस दिन किए हुए भगवान के स्मरण, भगवान के लीला का स्मरण, भगवान के निकटतम निकटस्थ हमें पहुंचा देगा। ऐसी व्यवस्था है भगवान की। तो वो केवल दिन ही नहीं है, उस दिन के साथ उस दिन की कथाएं लीलाएं भी है, उस समय की बातें हैं, उस समय का इतिहास है जो शाश्वत है। दयामय श्री राम की रचना है, रामायण के रूप में इसको आज भी हम इसका श्रवण कर सकते हैं। जिस रामायण का वैसे राम ने भी श्रवण किया था, साक्षात अपने पुत्रों से लव और कुश सुनाए राम को, रामायण सुनाए, वाल्मीकि लिखे लव और कुश को सिखाए और उसका प्रचार प्रसार हेतु भेजे सारे कौशल प्रदेश में। इस रामायण की कथा का प्रचार प्रसार करते कराते हुए लव और कुश पहुंचे जब अयोध्या, अयोध्या के गलियों में सुन रहे थे, सुना रहे थे लव और कुश अपने मधुर वाणी से, वीणा बजाते हुए वो गाया करते थे रामायण। और अयोध्या की गलियों में रामायण का रस, कई प्रकार के रस रामायण के हैं। वहां के रसिक श्रवण कर रहे थे, श्रृंगार रस को सुनते थे या करुण करुण रस का पान भी करते थे या हास्य रस या रौद्र रस या भयानक उस श्रीलंका में वहां का युद्ध, मानो शिव जी का तांडव नृत्य ही हो रहा था और भयानक स्थिति पैदा उत्पन्न करके विनाश कर रहा था वो समय। रावण और रावण की सेना को तो वहां के भी वो रस भी सुना रहे थे लव और कुश, और वीर रस भी सुना रहे थे राम का, वीर शूर श्री राम। तो अलग अलग रस भरी कथाएं लीलाएं रामायण की लव और कुछ सुना रहे थे, तो राम का ध्यान आकर्षित हुआ इन लीलाओं से, अपनी लीलाओं से आकर्षित हुए श्री राम और इन बालकों को बुला लिए और अपने राजमहल में बिठाए, अपने सारे भाइयों को बुलाए, कई सारे मंत्री आए और लव और कुश को माइक्रोफोन दिया, रिकॉर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लोग श्रुतिधर, फोटोग्राफिक मेमोरी, जो भी सुनते थे उसको धारण किया करते थे। तो वही रामायण राम भी सुने और सुध बुध खोए श्री राम इन लीलाओं का श्रवण करते हुए। वही रामायण पुराना नहीं कह सकते, 9 लाख पुराना नहीं है ये ताजा है, आज की ताजी खबर। इस संसार की सारी आज की ताजी खबरें कल तक बांसी हो ही जाती है। कूड़ा करकट के डिब्बे में फेंकी जाती है वो अखबार की खबरें। कि रामायण 9 लाख वर्ष प्राचीन इतिहास आज भी ताजा है। अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, फिर वो कृष्ण है या कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम है, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो राम कृष्ण कोई पुराने नहीं होते, शाश्वत है, नवयुवक है, किशोर है। तो उनकी कथा भी पुरानी नहीं होती। पुराणमपि नवम कहा है, पुराण कैसे है? अब पुराने हो गए, पुराण पुराने हो गए, फेंक दो पुराणों को, पुराने हो गए। ऐसे कहने वालों को पुराण की परिभाषा ही पता नहीं। पुराणम को क्या कहे, पुराणमपि नवम, पुराने होते हुए भी ये पुराण कैसे है, नए है। पुराणमपि नवम, फिर रामायणम अपि नवम, रामायण भी सदा के लिए नया ताजगी लेके हमारे हम तक पहुंचता है। और हमारा संबंध राम के साथ प्रस्थापित करता है, उस दूरी को घटाता है, मिटाता है। नौ लाख वर्ष, एक नहीं दो नहीं, सदियां बीत गई, कितनी सारी सदियां बीत गई, एक दो ही नहीं, हजारों। तो भी आज वही रामायण हमें प्राप्त है। राम के प्राप्ति का एक साधन है रामायण। रामायण साधन भी है, रामायण साध्य भी है। ऐसे राम की कथाएं 5000 वर्ष पूर्व भी, ऐसे पहले जब राजा परीक्षित बालक ही थे तो अपनी माता उत्तरा से राम की कथा सुनते थे, इसीलिए तो राजा हुए। अपने पुत्र को अगर कोई माता राजा बनाना चाहती है, कोई शूरवीर बनाना चाहती है, तो किसकी कथा, राम की कथा। लेकिन हम कुछ समय पंढरपुर में थे, तो पंढरपुर में कई बालकों के लिए कथा और कथा के ऊपर किसी के जीवन चरित्र पर वैसे प्रतियोगिता कंपटीशन चल रही थी, इसके जीवन पर आपको कुछ उत्तर देने हैं। पंढरपुर धाम में कंपटीशन, बालकों के लिए किसी चरित्र का वर्णन आपको पढ़ना है, फिर प्रश्न पूछे जाएंगे, कंपटीशन होगी, अवार्ड्स रिवार्ड्स उपहार मिलेंगे आप बालकों को। तो कई माता और पिता भी वहां एकत्रित थे, और पता है पंढरपुर धाम में किसके चरित्र का वर्णन वहां हो रहा था, अमिताभ बच्चन। और वो बेशरम माता और बेशरम पिता उसमें वो दिलचस्पी ले रहे थे, और मेरा बेटा जीतेगा, मेरी बेटी जीतेगी, तो उत्कंठित है। कहां से उत्पन्न होंगे शूर और वीर? उत्तरा ने तो अपना फर्ज निभाया, इसका फल को भी प्राप्त की, उसका बालक बना शूरवीर सम्राट परीक्षित। आप स्मरण रखिए, आपके बालकों को भी आप शूरवीर और क्या क्या, एक तो शूर, दूसरा वीर और क्या क्या, राम भक्त और चरित्रवान कह सकते हैं, कई कई बातें कह सकते हैं, विजयी ज्ञानी वैराग्यवान और कौन से गुण आपके पुत्रों में आप देखना चाहोगे? यशस्वी, वेरी गुड। और कैसा बालक केशव, आपका बालक कैसा? राम जैसा आदर्श पुरुष, तो अपने पुत्रों में पुत्रियों में इस प्रकार के गुण अगर हम देखना चाहते हैं तो ये कैसे संभव है? वो राम का चरित्र सुनेगी, कृष्ण का चरित्र भी सुनती है, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भी सुनती है, या श्रील प्रभुपाद जैसे भक्तों का चरित्र भी अगर वो सुनती है तो चरित्र त्यान से पहा जरा अपन त्यांचा समान भावे हाथ सा पड़े बोध खरा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र पुत्री और हमारे कभी रिश्तेदार हमारे इस देश के हम सब भारतीय ऐसे बने शूरवीर, तो चरित्र, तो राम का चरित्र सर्वोपरि है। तो जब बालक थे तब भी सुना ही था वो चरित्र, राम का चरित्र राजा परीक्षित ने जब बालक थे, और जब अब वृद्धावस्था क्या अब कुछ ही दिन शेष है राजा परीक्षित के, कुछ दो या तीन दिन में अब भगवान के धाम ही लौटना है उनको, उस समय भी पुनः वे राम चरित्र को सुने। किससे सुने होंगे? सुखदेव गोस्वामी से सुने। उस चरित्र को हम भी थोड़ा अब सुनेंगे। नित्यम भागवत सेवया, ये प्रातःकालीन कक्षा का भी समय है, तो भागवत में ही, भागवत के नवम स्कंध में राम कथा है। पहले राम हुए ना, बाद में कृष्ण हुए, तब नवम नवे स्कंध में राम कथा, फिर दसवें स्कंध में कृष्ण कथा, फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कथा उल्लेख तो है ग्यारहवें स्कंध में। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेर दशा, ग्यारहवें स्कंध में। तो नवे में राम कथा, दसवें में कृष्ण कथा, ग्यारहवें में चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख तो है ही। तो उस भागवतम से सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में कुछ वचन हम लोग सुन पाएंगे उस बड़े सागर को एक गागर में भर के। को पी लेंगे, उसी में डुबकी लगाएंगे। हम कुछ मोटे जीव नहीं हैं, केशाग्रशत भागश, केश का एक अग्रभाग और उसके सौ टुकड़े करो, फिर सौ में से एक टुकड़ा लेके उसके और सौ भाग करो, फिर उसमें से एक उठा लो, उस साइज के हम लोग हैं। तो उतने साइज के अहम हमको, एक बूंद ही वैसे सागर है, उसी राम कथा के सागर में से एक एक बूंद ही पर्याप्त है हम सभी के लिए। ऐसी कुछ एक बूंद या कुछ बूंदे उनको उठा के हम स्नान भी कर सकते हैं, उसमें अभिषेक भी कर सकते हैं अपने का। स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, उसको नहा सकते हैं। और उसी के साथ हम अपने को पावन बना सकते हैं। ये भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये आज का दिवस हमें पवित्र बना सकता है। रुद्यंतस्तो ही अभद्राणी, जहां भी चिपके हुए कुछ अनर्थ, अब भी कुछ चिपका हुआ है अनर्थ कहीं पर, रुद्यंतस्थ ऊपर ऊपर वालों को तो हमने हटाया भगाया, लेकिन क्या तो रुद्यंतस्थ बॉटम ऑफ द हार्ट, कोर ऑफ द हार्ट, कई अनर्थ चिपक जाते हैं, तो वहां वहां तक ये भगवान राम की कथा, भगवान राम का नाम पहुंचकर उसको साफ कर सकता है। जैसे आपका आइस्प्रो क्या विक्स वेपोर, अब उसकी एक्शन कैसे चलती है लंग्स में, लंग्स की बाद में ट्यूब और फिर छोटी छोटी ऐसी नली का, फिर छोटी बैग्स होती है, थैली होती है, तो वहां कोई कंजेशन हुआ है कुछ, तो वहां ये विक्स वेपोर पहुंच के उसको रगड़ देता है, उसको मलता है, उसको भीजता है, उसको साफ करता है। तो अगर आपका विक्स वेपोर वहां तक पहुंच सकता है, तो उससे भी अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली ये राम की कथा भी पहुंच सकती है, जहां तहां सर्वत्र, उसको कोई रोक नहीं सकता। श्री शुक उवाच स्वानाम विभीषणे चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेद विधानेन यदुक्तं सांपरायिकम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, किसने कहा? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उन्होंने संक्षिप्त में कथा कही है और उसका भी संक्षिप्त रूप हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और फिर उसका भी संक्षिप्त रूप आप घर जाके और उनको सुना सकते हो। आप किसी न किसी को आप कथा सुनाई राम की, सुनाओगे उस मन उस व्यक्ति को मन में लाइए, या कईयों को सुना सकते हो, एक या अनेकों को सुना सकते हो, फिर आपका श्रवण भी हुआ जो आप अभी कर रहे हो, और दिन में क्या होगा, कीर्तन होगा, श्रवणम कीर्तनम स्मरंती, फिर स्मरणम, फिर नंदंती, फिर आनंद, आनंद लेते हैं भक्त भगवान की कथा सुनने में और भगवान कथा सुनाने में। और मैं भगवान कथा औरों को सुनाऊंगा ऐसे सोच के जब हम सुनते हैं तो वो कथा अधिक स्मरण रहेगी, नहीं तो क्या, किसी को सुनाना ही नहीं है, याद रहेगी उतनी याद रहेगी भाई। लेकिन इसको मैं सुनाऊंगा, ये होमवर्क ऐसा लेके हम लोग सुनेंगे, ऐसा विचार करके सुनेंगे तो क्या होगा, स्मरण अधिक रहा। कि शिकायत होती है ना कि हम भूलते रहते, भूल जाते हैं। आप अगर याद रखना चाहते हो तो सुनाओ इन कथाओं को, फिर यहां भी ध्यान से सुनोगे, स्मरण भी रहेगा। और सुनाना तो दोपहर को है तो बीच में 10 घंटे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, चिंतन करना होगा, या शास्त्रों की भाषा में उसको मनन करना होगा, कॉन्टेम्पलेशन। और जितना अधिक मनन करेंगे उतना अधिक स्मरण रहेगा, और फिर जब श्रवण कर रहे तो आप स्मरण कर रहे हो, और फिर शाम को दोपहर को जब सुनाओगे किसी को तब भी स्मरण करना होगा। लेकिन जब मनन करते हो तब भी क्या करोगे आप, स्मरण ही तो करोगे। इस प्रकार सतत सातत्य रहेगा, भगवान राम या कृष्ण के स्मरण में सातत्य, सतत। जैसे ये शब्द ही है, शब्द कैसा है, सतत 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 सतत। ये शब्द सुनने से ही इस शब्द का कुछ भावार्थ या गूढ़ अर्थ हम लोग सुन सकते हैं। कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, कही आप, सतत सतत सतत, बीच में कोई स्थान जगह भी नहीं है, सतत जब कहते सतत सतत, कोई स्पेस नहीं है, स्पेस टायर जिसको हम लोग कहते हैं, कोई स्पेस नहीं, कोई स्थान, कोई रिक्त स्थान नहीं है, सतत जब कहते तो हम लोग जैसे गोपियां स्मरण करती थी भगवान का, सतत। और भूल विस्मर्तव्य न जात उचित, कभी भूलती नहीं थी, स्मर्तव्य सतत सततम विष्णु, विष्णु का, राम का, कृष्ण का सब समय स्मरण, विस्मर्तव्य न जात उचित, और कभी नहीं भूलती थी। हमारे जीवन का भी लक्ष्य तो यही है। अगर आपने कभी सोचा होगा हम लोग वैकुंठ जाएंगे, कि आज के दिन अगर आप सोचते हो कि हम लोग कहां जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, साकेत धाम जाएंगे, अगर आपने कभी सोचा होगा कि हम लोग गोलोक में जाएंगे, तो वहां क्या करना होता है, क्या करना, कितना स्मरण करना होता है, सुबह शाम 2 मिनट हो गया, सुबह 2 मिनट करते हैं और शाम को भी 2 मिनट्स, हम पागल थोड़े ही है, जैसे हरे कृष्ण वाले है। भगवान का स्मरण, अगर भगवत प्राप्ति हम चाहते, भगवान के धाम की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है, स्मरण कितना, सतत सतत होना चाहिए। तो भगवान का नाम ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि नाम की मदद से, लीला की मदद से, भगवान के दर्शन के मदद से, और ऐसे उत्सव हमको सुअवसर प्रदान करते हैं भगवान का स्मरण दिलाने में। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा राजा परीक्षित को, तो उस दिन का वर्णन, आज के दिन का वैसे वर्णन कर रहे, इसलिए हमने इस ये वचन सुखदेव गोस्वामी के चुने हैं, आज के दिन की बात कर रहे हैं। दसवीं के दिन श्रीलंका में विभीषण चक्रे, विभीषण ने कुछ कार्य किया, स्वानाम अपने स्वजनों के लिए पितृमेध विधानेन अंत्येष्टि का कार्य कर रहे हैं। विभीषण बचे हैं, दोनों भाई नहीं रहे और कितने सारे, और युद्ध तो कितने समय से चल रहा था लेकिन अंत्येष्टि के लिए समय किसके पास था, युद्ध में व्यस्त थे सभी। अब युद्ध समाप्त हुआ तो ये पहला ही अवसर प्राप्त हुआ है, तो विभीषण अब क्या करेंगे, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार किए जाएंगे रावण के ऊपर भी। कोसलेंद्र कोसलेंद्र अनुमोदितः, उन्होंने अनुमति ली, किससे अनुमति, विभीषण ने अनुमति ली अंत्येष्टि विधि के लिए। कोसल इंद्रिय कोसल इंद्र कोसलेंद्र, कोसलेंद्र कौन है, राम है, कोसल नाम का देश, उसी राज्य की वो कौशल्या थी, कौशल्या कौशल देश नाम से वो नाम जुड़ा हुआ, तो उसी देश के इंद्र राम, उनसे अनुमति लिए विभीषण। यद उक्तम, जो भी विधि विधान शास्त्रों में कहे गए हैं, ऐसे विधि विधानों को अब अपना रहे हैं विभीषण। सांपरायिकम, नरक जाने से बचाने के लिए मृत्यु के बाद किए जाने वाला कर्म, श्रील प्रभुपाद यहां अनुवाद कर रहे हैं सांपरायिकम। तो राम ने अनुमति, हाँ हाँ इनका उद्धार होना चाहिए, राम कह रहे मरने दो ना, ऐसा राम कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अनुमति दी है, ये राम का अनुग्रह, रावण के ऊपर उनका विशेष अनुग्रह। अंत्येष्टि क्रिया की जाएगी तो इनका गंतव्य स्थान नरक नहीं होगा, कुछ ऊपर जाएंगे, अधः नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है, भगवान का धाम है, तो उनके उद्धार हेतु, उन्नति आत्मोन्नति हेतु विभीषण ने कई सारे प्रामाणिक अंत्येष्टि कृत्य किए। तत्पश्चात अब संक्षिप्त ही बात यहां है, तो ततो ददर्श भगवान शोक वनिकाश्रमे, अशोक वन में, कौन थी अशोक वन में, सीता को देखा। ददर्श भगवान ने सीता को देखा, अशोक वन में देखा, क्षामाम कैसी थी, जब देखा राम ने देखा, कौन देख रहे, आप क्या दे, आप किसको देख रहे हो, दोनों को, वेरी गुड, पहले आप राम को देखोगे, यह सुखदेव गोस्वामी हमें राम को दिखा रहे हैं, पहले राम को देखो, राम देखो, राम देख रहे, ददर्श राम ने देखा, तो हम भी अगर सीता को भी देखते तो हम राम के दृष्टि से देखेंगे। सुखदेव को, हाँ देखो देखो राम ने देखा सीता को, तो राम ने जब देखा सीता को कैसी थी, क्षामाम बड़ी दुबली पतली थी सीता, ऐसे सीता को देखा। अब दुबली पतली क्यों हो गई? स्विरह व्याधिम, व्याधि से ग्रस्त थी। क्या बुखार था कि मलेरिया था कि और क्षय रोग था क्या? दुबली पतली हुई, कौन सी व्याधि से ग्रस्त थी? स्विरह व्याधिम, अपनी ही राम के विरह के मारे या राम के विरह की व्याधि के कारण, उसे ग्रस्त होने के कारण सीता कैसी हुई थी? क्षामाम, बड़ी दुबली पतली थी, बनी थी। और ऐसी सीता एक पेड़ के नीचे, उस पेड़ के आश्रय से उसको सीधे बैठना भी मुश्किल हो रहा था, आश्रय लेके क्या लिखा है, आश्रिताम, मूलम आश्रिताम, किसी पेड़ के जड़ का आश्रय लेती हुई सीता वह बैठी थी, दुबली पतली थी। क्यों थी दुबली पतली ये भी सुनाए। और ऐसे सीता को किसने देखा? राम ने देखा। अब आप क्या किसको किसको देख रहे हो? राम और सीता को अब देख रहे हो। जब तक शास्त्र नहीं दिखाता तब तक हम लोग देख नहीं सकते, समझो इस बात को। जब तक शास्त्र नहीं दिखाएगा तो हम लोग देख नहीं सकते। आंखें तो है लेकिन जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक वो आंखें बेकार है। आपकी आंखें तब तक बेकार है जब तक प्रकाश नहीं है। तो सूर्य कौन है? जैसे सूर्य भगवान की आंख है। जिस चीज को, जिस किसी वस्तु को, व्यक्ति को आप देखना चाहते हो उसको पहले कौन देखते हैं? सूर्य भगवान, सूर्य देखते हैं। जो भगवान की आंख, पहले भगवान देखते हैं फिर महाप्रसाद। भगवान पहले खाते हैं फिर हम उनका प्रसाद खाते हैं। पहले भगवान देखते हैं फिर हम देख सकते। भगवान नहीं देखेंगे मतलब भगवान ने अपनी आंख नहीं खोली है। एक उनकी आंख है सूर्य और दूसरी आंख है चंद्रमा। तो उसी सूर्य वंश में राम प्रकट हुए तो चंद्र वंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो हुआ तो देखना है तो शास्त्र की मदद, शास्त्र चक्षुषा का। हमको चश्मा पहनना पड़ता है, हम लोग अंधे हैं, बूढ़े हैं या हम देख नहीं सकते। देखना चाहते हो भगवान को, देखो, शास्त्र का चश्मा पहनो, शास्त्र चक्षुषा। तो हमें दिखा रहे सुखदेव गोस्वामी या भागवत हमें दिखा रहा भगवान की लीला को या रामायण विस्तृत अभी दर्शन या वर्णन कराता है उस भगवान की लीला का। रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष अन्वकंपत। अब तो हमने पहले राम को ही देखा था, राम के रूप को हम लोग बाहर से देख रहे थे, राम को सीता को देखते हुए हम देख रहे थे। अब उनके मन में जब देखा उन्होंने तो क्या हुआ? क्या वीक्ष, राम ने जब देखा तो वैसे पहले वर्णन आया है सीता कैसी, सीता दुबली पतली तो हाँ हाँ, लेकिन और भी तो यह वर्णन है, वो भी उसके भी आगे जाना है। तो प्रियतमा सीता कैसी? प्रियतम राम और प्रियतमा उनकी धर्म पत्नी सीता भार्याम, यानी रामः प्रियतमां भार्याम। और कैसी सीता? एक तो राम प्रिया या प्रियतमा भारिया दीनाम, दीनाम बेचारी, बेचारी सीता दीनाम, दीनहीन यत शीलो, दीन दीनहीन, दीन दीन नहीं दीन, दो तो अलग अलग शब्द है, दीन और दीन। दीन क्या होता है? दिनकर, दिनकर दिवस सूर्य, और दीन दीन गरीब बेचारा बेचारी, यह दीनाम मतलब असहाय, और कोई मदद बेचारी सीता। राम के बिना तो उस सीता कैसी है? बेचारी है, बेकार है या बेचारी है। और हम कैसे हैं राम के बिना? हम भी तो बेचारे हैं, बेचारी बेचार या बेकार है, बेकार है वो मुख जो राम का नाम न करे, नाम न ले। तो दीनाम विक्ष, और ऐसे सीता को जब राम देखे, विक्ष अन्वकंपत, राम के मन में बड़ी करुणा दया दया उत्पन्न हुई। ऐसे ही दीनाम प्रियतमाम भार्याम विक्ष, जब उन्होंने देखा ऐसे सीता को, तो ओ सीता, ओ सीता, तुम यहां सीता, ऐसे सीता को तो उन्होंने कभी नहीं देखा। इतने दुबली पतली सीता को, ऐसे असहाय सीता को तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो अन्वकंपत दयालु, दया जागृत हुई राम के मन में। अब सुखदेव गोस्वामी, अब सीता में कैसे परिवर्तन, सीता ने जब राम को देखा तो सीता में कैसे परिवर्तन हुआ? क्या किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ भी कि नहीं? या हुआ तो क्या हुआ, समझाते हैं। आत्मसंदर्शनात् आह्लाद, जब राम को देखा तो उसका हृदय में आह्लाद, झट से उनका मन भर गया। किससे भर गया? आह्लाद से भर गया। प्रह्लाद आह्लाद दायिने, प्रह्लाद को आह्लाद देते हैं कौन? नरसिंह। प्रह्लाद आह्लाद दायिने, वैसे भी प्रह्लाद आह्लाद से पूर्ण होते हैं प्रह्लाद, और ऐसे प्रह्लाद को फिर भगवान क्या करते हैं? ऊपर से और आह्लाद देते हैं। तो फिर कुछ शेष रहेगा और किसी चीज के लिए, चिंता के लिए, भय के लिए कोई स्थान, रिक्त स्थान है ही नहीं। तो सीता ने जब राम को देखा तो संदर्शनात्, ये भी केवल दर्शन नहीं किया, क्या किया? यह संदर्शना, एक होता कीर्तन और दूसरा होता है संकीर्तन, सम्यक प्रकार। यानी कि इसे देख लिया और फिर मुंह मोड़ लिया, ये नीचे देखा, या वो देखती रही, जी भर के देख रही थी। देखने की चीज है तो क्या करो? देखते ही रहो, बार बार देखो, और हजार बार भी देख सकते हो। ऐसी कोई व्यक्ति संसार में है तो वो है श्री राम है, या सीता है, या हनुमान है, उनको भी देखो, या संसार के बदमाशों को मत देखना। ऐसा कोई दिखाई दे तो झट से आंखें बंद करो, जमुना में डुबकी लगाओ। लेकिन उन्हीं को हम लोग देखते रहते हैं, दूर का दर्शन लोग करते रहते, दूर का दर्शन हमारे बेडरूम में लाके उसका दर्शन हम करते ही रहते हैं। कितने अभागी हैं हम, संदर्शनाद। इसीलिए आह्लाद का अनुभव कर रही है सीता, और विकसन मुख पंकजाम। अब वो स्थिति नहीं रही, वो दीनाम जो भी था वो स्थिति नहीं रही। जब एक तो उसका हृदय आह्लाद से भर गया और उसका जो मुख मंडल था राम मानो सूर्य, सूर्य जब उदित होता है तो कमल क्या होता है, कमल क्या करता है, कमल खिल जाता है। मुरझी गई थी, मुरझा हुआ उसका उसका चेहरा, वो कमल राम को देखते ही प्रफुल्लित प्रफुल्लित हुआ वो चेहरा, और देखती ही रही अपने प्रियतम को। इतना ही वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं। और अब झट से दूसरा दृश्य हमें दिखाएंगे, आगे का प्रसंग, और वो है अयोध्या जाने की तैयारी। आरोप्य, तो उनका विमान तैयार है, पुष्पक विमान जिसमें आरोप्य, सबसे पहले तो सीता को बिठाए। ये सारा कांड किसके लिए हुआ था, जिसके लिए हुआ था, औरों को भी ले जाएंगे लेकिन पहले किसको बिठाना चाहिए इस स्थिति में, जो परेशान जो था थी सीता, तो उनको पहले बिठाए। आरोप्य आरुरुहे, और स्वयं भी बैठे यानम उस यान में, और बिठाए फिर भ्रातृभ्याम, दो भाइयों को बिठाए कहा है। दो भाई कहां से आ गए, एक तो भाई चल रहे थे साथ में। सुग्रीव को भी राम अपना भाई ही समझते थे, तो भ्रातृभ्याम यान में दो भाइयों को बिठाए, एक लक्ष्मण को बिठाए और दूसरे सुग्रीव को बिठाए। तो पुनः जब वहां पहुंचेंगे अयोध्या में, तो रामायण में वर्णन है, भरत जी ने जब स्वागत किया सभी का, राम का भी, अभी करेंगे थोड़ी देर में थोड़ा वर्णन उसका होगा, तो यह उसी की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वहां भी भरत कहते हैं, थोड़ा एडवांस में हम लोग कह रहे हैं, सुग्रीव को भी अपना भाई, हम लोग तो वैसे चार भाई नहीं, हम लोग पांच भाई है, भरत ने कहा, तो पांचवें भाई कौन, सुग्रीव। आप, आपका भी स्वागत है, आप हमारे पांचवें भाई हो। तो यहां लंका में भी दो भाइयों को बिठाया कहा, लक्ष्मण और सुग्रीव को, और वहां जब उतरे तो सुग्रीव ने, सुग्रीव का भी स्वागत भरत वैसे ही करते हैं मानो वो एक भाई ही हो उनके। तो भ्रातृभ्याम हनुमत युतः, हनुमान के साथ, हनुमान को बिठाए। विभीषणाय, विभीषण को बिठाएंगे, बिठाया ऐसा यहां नहीं लिखा है, लेकिन पहले कहेंगे कैसे विभीषण। अब विभीषण पहले से नहीं रहे, अब युद्ध हुआ, अब राम का विजय हुआ, रावण नहीं रहे, तो अब विभीषण कैसे बनेंगे। विभीषणाय भगवान दत्वा, भगवान ने दिया, लंका का सारा राज भगवान ने किसको दिया? विभीषण को दिया। रक्षो गणे ईशताम, वहां के जो राक्षस गण जो बचे थे शेष थे उनकी ईशताम उन पर शासन करेंगे। ईशताम ईश कौन, उनके ईश कौन बनेंगे? विभीषण बनेंगे। रक्ष रक्ष राक्षस गण ईशताम उन राक्षसों के ईश्वर शासक बनेंगे। विभीषण को शासक बनाया, वहां की गद्दी, वहां का राज्याभिषेक, शायद पता नहीं कब हुआ नहीं, लेकिन दे ही दिया। तो अभिषेक वो डिटेल बात है, आगे पीछे हुई होगी अभिषेक की बात, राज्याभिषेक। और क्या दिया? ईशताम, ऐसे इसके साथ कहना चाहिए ईशताम लंकाम, लंकाम की ईशताम, लंका का राज्य दिया, लंका के शासक बनाया विभीषण को श्री राम ने, भगवान जिनको यहां कहा। और क्या दिया? आयुश्च कल्पांतम, और उनको लंबी आयु दी। यहां जब किसी को लंबी लंबी आयु देना चाहते हैं, हम कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? शरद शतम पश्चिमः, तुम सौ क्या करो, शरद ऋतुओं का दर्शन करो, मतलब उसके साथ ही ग्रीष्म ऋतु भी है, उसका दर्शन करने के लिए आशीर्वाद मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन शरद ऋतु तुम देखना, अच्छा शरद ऋतु अच्छा होता है, अभी आ ही रहा है, कार्तिक का जो मास है अश्विन कार्तिक, ये मास कैसे हैं? शरद ऋतु के हैं ये मास, वैसे ये ऋतु वैसे कौन सा ऋतु है? अब जो है शरद ऋतु ही है। अब आने वाली जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा कैसी है? शरद पूर्णिमा ही है, जिस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण रास रचेंगे। तो ये दो महीने शरद, तो तुम सौ शरद ऋतु का दर्शन करो, मतलब सौ साल तुम क्या करो, जियो, जीते रहो बेटा। तो सौ साल को हम लोग बहुत लंबी आयु समझते हैं, लेकिन राम ने विभीषण को जब लंबी आयु का आशीर्वाद दिया तो क्या कहा? कल्पांतम, एक कल्प के लिए तुम जियो। अब कल्प कितना लंबा होता है समझाते समझाते आपको पांच मिनट तो लग जाएंगे, कल्प बड़ा लंबा है, सौ साल तो झट से समझ में आता है, लेकिन कल्प पहले शब्द नहीं सुना होता है, फिर बहुत लंबी अवधि है। तो इतना लंबी आयु उनको दी, आशीर्वाद दिया, और फिर राम निकले। ययो चीर्ण व्रतः पुरीम, अब इस समय, इस क्षण तो नहीं कह सकते, इस समय क्या हो रहा है? उनका 14 साल का वर्ष का वनवास का जो व्रत, उन्होंने व्रत लिया था, एक पत्नी व्रत तो था ही और कई सारे व्रत उनके, एक वचनी और एक बाणी, ऐसे राम के व्रत, राम का महात्म्य। तो एक व्रत तो उनका 14 वर्ष का वनवास का व्रत जब पूर्ण हुआ तो ययो राम गए, प्रस्थान कर रहे हैं पुरीम, कौन सी पुरी को? अयोध्या पुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं श्री राम। यान में बैठे हुए चल के भी आ सकते थे ना, चल के आ सकते थे, चल के गए तो चल के आ भी सकते थे, कि नहीं आए, पता है क्यों नहीं आए? पर चल के आते तो क्या होता पता है आपको? भरत का पुनः दर्शन नहीं होता। भरत इस संसार में नहीं रहते, राम चल के अगर अयोध्या लौटते तो फिर पुनः राम एक वचनी है, उन्होंने वचन दिया था। किसको वचन दिया? भरत को वचन दिया था, मैं लौटूंगा। या राम वैसे भरत ने कहा था ठीक है आपकी जैसी मर्जी, उन्होंने खूब प्रयास तो किया था चित्रकूट में राम को ही अयोध्या ले आने का, राम तो लौटे नहीं। राम ने अपनी पादुका ही दी भरत को, ये ले लो। तो भरत ने हर प्रयास किया, हर प्रार्थना की, चरण छुए, क्या नहीं किया, लेकिन सफल नहीं हुए। राम का वचन, राम एक वचनी, मानो पत्थर पर की रेखा जब होती है तो उसको मिटा नहीं सकते। तो राम के मन में कोई बात बैठती है, कोई वचन लेते हैं, कोई व्रत लेते हैं, उसमें परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, भरत भी नहीं कर सके। हां भ्राता श्री, आप लौटोगे तो नहीं तो 14 वर्ष, लेकिन जब 14 वर्ष पूरे होते हैं तब आपको लौटना होगा। आपने एक क्षण की भी अगर देरी की अयोध्या लौटने में तो फिर हम पुनः नहीं मिलेंगे। आप चाहते हो कि हम पुनः मिलेंगे, दर्शन होगा, तो 14 वर्ष की अवधि जब समाप्त होती तब आपको लौटना होगा। तो यही समस्या थी, राम ने वचन दिया था। राम के लिए भरत कितने प्रिय थे, राम और भरत का जो प्रेम है, संसार में ऐसे दो भ्राता नहीं हुए। भ्रातृ प्रेम अगर इस संसार ने देखा है तो राम और भरत के मध्य का जो दो भाइयों का प्रेम, ये सर्वश्रेष्ठ भ्रातृ प्रेम है संसार का, इस ब्रह्मांड का। तो राम चांसेस नहीं ले सकते, उनको भरत को मिलना था इसलिए यान से जा रहे हैं। तो सभी जब बैठे, अब यात्रा प्रारंभ हुई, तो उसके लिए वैसे कोई अलग से समय तो नहीं लगेगा, यान तेजी से जा ही रहा था। जब तो पहले उड़ान किया तो हुआ कि उनकी फ्लाइट कहां से जा रही थी, पहले उनका जब विमान ने उड़ान किया तो पहले कहां क्या देखा होगा, जब नीचे देखा तो क्या था? रामेश्वर पहुंच भी गए उड़ान करते ही, रामेश्वर पहले समुद्र था। और समुद्र में क्या था आप लोगों, मछली थी, मगरमच्छ। नीचे जब देखा तो क्या देखा होगा, क्या दिखाई दिया होगा? सेतु को देखा, राम ने देखा और राम दिखाना चाह रहे, राम दिखाए वैसे सीता को, सीता के टूर के गाइड जो होते हैं ना, अपना माइक्रोफोन लेके, ए देखो इधर, देखो इधर, देखो, फिर वहां का वर्णन सुनाएंगे, ये देखो ऊपर देखो, कभी गाड़ी को रोक के फिर दिखाएंगे, उतरेंगे। तो राम सीता को दिखा रहे, ये देखो यही तो पुल हम लोगों ने बनाया, ये हनुमान, शाबाश हनुमान, थैंक यू हनुमान, बगल में बैठे थे। और उसे कई वानरों को भगवान लेके जा रहे थे साथ में, और उनकी पत्नियां भी साथ में चल रही थी उन वानरों की, उनको साथ में लेके जा रहे थे। तो सीता को वो पुल दिखाया है, लॉन्गेस्ट ब्रिज, अगर कोई संसार में है सबसे लंबा पुल, कई सारे क्लेम्स आजकल चलते रहते हैं, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो वैसे लॉन्गेस्ट ब्रिज तो कौन बनाए? श्री राम बनाए। रामेश्वर से लंका तक। तो कहते कुछ ऊपर से तो अभी नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमने सुना या पढ़ा कि साइंटिस्ट लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है वहां पर, उस समुद्र में उनके जो अभी टेलीस्कोप्स और ये जो स्पुटनिक्स वगैरह जो उन देखने की थोड़ी शक्ति अधिक है, आंखों की शक्ति बढ़ाते हैं ये टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स भी है तो टेलीस्कोप, तो उनकी मदद से और भी कोई जो यंत्र है उनके उनके मदद से वो देख रहे हैं, तो उनको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ शंका हो रही। हाँ 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 हाँ, रामायण में जो सेतु का जो वर्णन आया है वो तो ये नहीं है, ऐसे कुछ साइंटिस्ट के मन में विचार आ रहे हैं। जैसे कुछ वर्ष पूर्व द्वारका, आपने पढ़ा कि नहीं रिपोर्ट, द्वारका में भी कितनी सारी खोजें, पनडुब्बी में एक मिस्टर डॉक्टर राव करके एक कमीशन, भारत सरकार ने एक स्पेशल कमीशन एक समिति का गठन किया और द्वारका द्वारका बेट बेट द्वारका आइलैंड द्वारका जहां अब है वहां उन्होंने कितना सारा बहुत बड़ी धनराशि क्रोर्स कई करोड़ों की लागत से वहां खोज की, वहां गए समुद्र में। तो उस खोज का परिणाम ये निकला, जितने सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक उसमें व्यस्त थे उन्होंने साफ कह दिया कि यह एक समय शहर था उस क्षेत्र में। तो जिन लोगों का विश्वास शास्त्रों में नहीं है, इस शास्त्र में नहीं है, जिन लोगों का विश्वास केवल आजकल के नाम के जो शास्त्रज्ञ है, इसको जो जानता है, शास्त्र को जो जानता है, शास्त्र के मतलब क्या, शास्त्रज्ञ मतलब क्या, शास्त्र का ज्ञाता, वेरी गुड, शास्त्र को जो जानता है वो शास्त्रज्ञ। तो भगवत गीता, भागवतम, रामायण ये क्या है, ये शास्त्र है, इसको जानने वाला शास्त्रज्ञ है। तो इसको जानने वाले इन शास्त्रज्ञों को, शास्त्रों को जानने वाले शास्त्रज्ञ, ऋषि मुनि, भगवत भक्त, राम कृष्ण भक्त परायण, इन्होंने तो इनको तो पता ही था वहां द्वारका है, लेकिन और लोगों को भी अब पता चला और लोग भी स्वीकार कर रहे, हाँ हाँ यह द्वारका थी, देखो ये सारे डिस्कवरी, ये सारा खोज, यह सारे निष्कर्ष, ये सारे अनुमान या ये भी इंफॉर्मेशन। तो अब सेतु भी होना चाहिए वहां, पुल, ऐसी कुछ शंका सी हो रही है आने वाले, आशा करते आने वाले कुछ वर्षों में डिक्लेयर करें कि लोगों का, मूर्खों का अधिक विश्वास किन में है, उनकी आंखों में है या उनके ये दूरबीन में है या दूरदर्शक यंत्र में है या सूक्ष्म दर्शक यंत्र में है, लेकिन उससे भी अधिक जो सूक्ष्म है या दूर है उनका दर्शन कराने वाला यंत्र अगर कोई है तो शास्त्र है। तो राम जा रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो राम जा रहे थे, अयोध्या धाम की, अयोध्या की ओर ययो पुरीम, अयोध्या पुरी की ओर। अवकीर्ण मानः कुसुमैर् लोकपालार्पितै पथि, तो रास्ते में उनका स्वागत हो रहा है, भगवान कहीं उतर रहे हैं, स्वागत हो रहा है, या फूलों की वर्षा हो रही है, या उनका यान कुछ हेलीकॉप्टर बहुत नीचे आ जाता है ना, फिर हेलीकॉप्टर में जो लोग बैठे उनके साथ शेक हैंड भी हो सकता है। अभी उतरा नहीं पूरा, हवा में ही है, तो हेलीकॉप्टर ऐसा इतना नीचे आ सकता है, तो भगवान का यान भी, तो ये जो स्वागत किया की बात है तो हम कुछ कल्पना कर सकते, भगवान का यान कभी नीचे भी आ रहा है, कई सारे राजा महाराजा उनकी प्रजा स्वागत करना चाह रही है, तो राम उन सभी का स्वागत स्वीकार करते हुए, और केवल राजा और महाराजा इस पृथ्वी के, इस भारतवर्ष के ही स्वागत और अभिनंदन नहीं कर रहे थे प्रभु का, और कौन थे? उपगीयमान चरितः शतधृत्यादिभिर् मुदा ब्रह्मा इत्यादि, मतलब आप समझ गए, ब्रह्मा जब आए हैं, मतलब सभी आ सकते हैं, श्री शिव जी भी है, इंद्र भी है, चंद्र भी है, वरुण, सारे 33 कोटि देवता क्या कर रहे हैं? उपगीयमान चरितः, भगवान का जो चरित्र है, लीला है, उनका गान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, अभिवादन दे रहे हैं प्रभु को। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, अभिनंदन हो आपका प्रभु, क्योंकि रावण के कारण ये देवता भी डरे हुए थे, तो भगवान ने देवताओं की तो मदद की, अब निर्भय बने देवता, अब आके प्रभु के चरणों में अपनी स्तुति प्रार्थना आभार प्रदर्शित कर रहे थे। जब वे जा ही रहे थे, पता नहीं, तो राम कईयों का स्मरण करते होंगे वहां, लेकिन एक व्यक्ति का विशेष स्मरण कर रहे हैं, वो कौन होंगे? भरत का ही, भरत का स्मरण कर रहे हैं, कि उन्होंने वादा से एक व्यक्ति को दिया, सभी व्यक्तियों की ओर से, लेकिन एक व्यक्ति को उन्होंने वादा किया, मैं 14 वर्ष पूरे होते तो मैं आई विल बी लैंडिंग, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो कैसे भरत, ऐसे भरत के संबंध में राम ने सुना, पहले के भरत को तो वो जानते थे, लेकिन अभी अभी उनको समाचार मिला कि जब से भरत चित्रकूट से अयोध्या लौटा, एक तो अयोध्या में उसने प्रवेश ही नहीं किया, बाप रे, आ क्या कह रहे हो? राम ने सोचा, आ रियली लौटा नहीं, प्रवेश भी नहीं किया, अयोध्या के बाहर ही राम की प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा हेतु भरत रहते थे। नंदीग्राम नाम का स्थान है, नंदीग्राम कहते हैं, ये नंदग्राम नहीं, वृंदावन में नंदग्राम है नंद बाबा का, और अयोध्या में, अयोध्या के बाहर, आउटस्कर्ट्स ऑफ अयोध्या जिसको कहेंगे, वहां भरत रहते थे, शहर में नहीं गए। और कैसे रहते थे? गोमूत्र जावकम, खाते थे क्या? जौ खाते थे, कुछ दलिया खाते थे, उबाल के, कोई मसाला वगैरह नहीं, कोई घी तूप वगैरह कुछ नहीं, और उबाल देते किसमें? गोमूत्र, गोमूत्र यावकम, गाय के मूत्र में उबाल के, और भी तपस्या, ऐसी तपस्या को अपनाए थे भरत जी। श्रुत्वा, राम ने सुना, भ्रातरम वल्कलंबरम, केवल राम ने ही वल्क, वल्क वस्त्र, जो वृक्षों की जो छाल होती है, राम तो पहनते ऐसे ही वस्त्र पहनते थे, लेकिन भरत भी ऐसे ही वस्त्र पिछले 14 वर्षों से पहन रहे हैं। क्या आपने सुना है? ऐसे राम ने जब सुना, और इतना ही नहीं, जटिलम, जटा बढ़ाई है, किसी नाई के पास नहीं गए, उन्होंने कोई हेयर कटिंग कुछ नहीं, दाढ़ी बाल जटा ऐसी लंबी, 14 वर्षों से ऐसी लंबी जटा, जैसे राम की वैसे भरत की भी वहां पर। स्थंडिलेशयम, और विश्राम के लिए तो जमीन पर ही कुश ग्रास, कुश नाम का घास होता है, उसी का बिछाना ना, पतला सा बिछा के भरत उस पर सोया करते थे। ये सारी बातें जब राम ने सुनी, महाकारिणी को महा महा करुणा जगी श्री राम की, ये सब वर्णन सुन के तो हो सकता है उनका राम को हम पहुंच पाएंगे कि नहीं समय पर, न जाने 1-2 मिनट का, कुछ सेकंड का देरी भी हो सकती है, तो राम ने कहा कि हनुमान तुम जाओ, तुम आगे बढ़ो, एडवांस पार्टी, कि तुम जिस गति से जा सकते हो, हमारा ये यान उतना काफी लोडेड भी है, कई सारे बैठे हैं इसमें, जाओ और भरत को कहो मैं आ ही रहा हूं। वो घड़ी की ओर देखता होगा, ये मस्ट बी काउंटिंग, वन मोर मिनट, एक और 1 मिनट बाकी है, या अभी कुछ ही मिनट बाकी है। तो उस उत्कंठित भरत को जाके कहो मैं आ ही, हम लोग आ ही रहे हैं। राम का आदेश प्राप्त होते ही हनुमान ने अयोध्या की ओर 10 गुना अधिक वेग से, गति से हनुमान आगे बढ़े। भरतः प्राप्त आकर्ण्य, और समाचार अगर सुना भरत ने राम के आगमन का, तो किससे सुना होगा? हनुमान से। भरतः प्राप्त आकर्ण्य, राम आ रहे, राम आ रहे। पौरामात्य पुरोहित, पुरोहितों को उन्होंने समाचार दिया, अब तो सारे नगरवासियों के पास ये समाचार पहुंच गया, अति अल्प समय में सारा अयोध्या नगरी को पता चला राम के आगमन का, और जिस कार्य में वे व्यस्त थे नगरवासी सब, वही का वही छोड़ छाड़ के कूद पड़े, नाचने लगे, गाने लगे, अपना उत्साह उल्लास का प्रदर्शन करने लगे। हर व्यक्ति, अयोध्या का हर व्यक्ति किसको सोच रहा था, किसका स्मरण करता होगा? केवल उनके दिमाग में केवल राम ही राम। तो अब राम के स्वागत की तैयारी। तो सबसे आगे बड़ी शोभा यात्रा, बड़ी यात्रा, और सभी नगरवासी उस यात्रा में, कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं, वो वैसे भी थे, लेकिन अधिकतर जा रहे हैं जिस दिशा से अब दक्षिण की ओर से यान आएगा, तो वह शहर के बाहर स्वागत होगा। तो शोभा यात्रा के सबसे आगे अगवानी, राम की अगवानी होगी, राम का स्वागत होगा। तो सबसे आगे कौन थे? पुनः भरत है। और कैसे भरत? पादुके शिरसी न्यस्य, उन्होंने अपने सिर पर किसको लिया? राम की पादुका। वैसे उनके लिए राम की पादुका ही राम थे। 14 वर्षों तक उन्होंने राज कहां किया? राम के पादुका ने राज किया। उस आसन पर बिठाए थे पादुका को ही, उन पादुका के चरणों में बैठते थे भरत, उन पादुका को ही नमस्कार करके आदेश प्राप्त उन पादुका से ही करते हुए भरत 14 वर्षों तक अयोध्या का राज करते रहे। वो पादुका राम ही थे भरत के लिए। तब स्वयं राम ही आ रहे हैं, तो हुआ अब उठाएंगे पादुका को, उठाएंगे राम जब आएंगे तो उनके राम स्वयं राम ही रहेंगे। अब अलग से पादुका की आवश्यकता नहीं है, पादुका वैसे राम से अभिन्न ही, तो उनके लिए राम ही थे। अब राम आ रहे तो राम में पादुका को मिला देंगे, समाया जाएगा, लौटाया जाएगा। इस उद्देश्य से पादुके शिरसी न्यस्य रामम प्रति उद्यतो अग्रजम, तो राम की ओर, राम के स्वागत के लिए नंदीग्रामात स्वशिबिरात, मतलब जहां उनका अपना शिविर, उनका पड़ाव पिछले 14 वर्षों से था, वहां से नंदीग्राम से शहर की और भी बाहर की ओर प्रस्थान, नगरवासी जिनके सबके आगे थे भरत प्रस्थान किए। गीतवादित्र निस्वनय, तो कई वाद्य बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, ब्रह्म घोषेना च मुहु पटद्भिर् ब्रह्मवादिभिः, तो कई पुरोहित साथ में हैं, गा रहे हैं वे शांति पाठ या कई सारे सूक्त, पुरुष सूक्त इत्यादि के वचन कह रहे हैं, और विस्तृत वर्णन है यहां। पादयो न्यपतत प्रेमना, तो अब जैसे दोनों लंका से आने वाला भगवान का यान भी आ रहा है बड़े तेजी से अयोध्या की ओर, और अयोध्या के वासी भरत भी दक्षिण की ओर शहर के बाहर जा रहे हैं। तो अब कुछ ही क्षणों में दोनों का मिलन हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के। तो सभी देख रहे थे यान को उनकी ओर आते हुए। यान को जब देखा तो उनके को जान प्राप्त, यान को देखा तो जान, जान में जान आ गई। जानकी को भी देखा तो जान आ गई। पी रहे थे सब, सारा वो दृश्य देख रहे थे। तो राम को फिर जब राम उतरे, सभी उतरे, उतर रहे अभी, वाह पादयोर अपतत प्रेमणा। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने पूरा दंडवत करके साष्टांग दंडवत किया और चरण धारण किए अपने हाथों में, वे थे भरत। पादुके न्यस्य पुरतः, प्रणाम समाप्त होते ही भरत ने राम की पादुकाएं राम के समक्ष, राम की पादुकाएं भरत ने उनके समक्ष रखी जो राम से प्राप्त हुई थी। अब राम को लौटा रहे वो पादुकाएं। प्रांजलि बाष्पलोचन तमाश्लिष्य चिरम दोर्भ्याम स्नापयन नेत्र जैर्जलै। तो ये जो क्षण है मातृ प्रेम का पूरा यह प्रदर्शन है। बाष्पलोचन दोनों के भी नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। गंगा जमुना बह रही है। तम आश्लिष्य एक दूसरों को दोर्भ्याम बाहु पाश में बांध दिए हैं एक दूसरों को भरत और श्री राम। चिरम और बहुत समय के लिए वे एक दूसरों को आलिंगन देते ही रहे। स्नापयन और स्नान कराते रहे, एक दूसरों को स्नान करा रहे। राम स्नान करा रहे हैं भरत का और भरत स्नान करा रहे हैं, कर रहे हैं राम का। कैसे? नेत्र नेत्र जलय नेत्रैर जल नेत्र जैर जलय। जल उत्पन्न हुआ, जल कहां से उत्पन्न हुआ? जल नेत्र ज, दूसरा नया शब्द आ गया। जल कहां से आया? जल नेत्र ज, उस जल ने कहा जन्म लिया। कहां से उत्पन्न हुआ जल? नेत्रों से। पाझरती लोचन, तो काराम पाझरती लोचन, उनके लोचन ही पाझर बने, निर्झर बने, तालाब बने जहां वो स्रोत बने जल का। नेत्र जैर जलय, तो वो जो अश्रु की जो धाराएं बह रही थी दोनों के आंखों से, वही एक दूसरों का अभिस्नापयन अभिषेक एक दूसरों का हो रहा था। रामो लक्ष्मण सीताभ्याम विप्रेभ्यो ये सत्तमाः। अब दूसरों का एक दूसरों का मिलना, सीता लक्ष्मण राम इन्होंने नमस्कार किए, तेभ्य नमश्चक्रे, उन्होंने नमस्कार किया किसको, विप्रेभ्य, जो भी विद्वान थे, भक्त थे, अर्हसत्तमा, जितने भी पूजनीय थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, सभी को राम लक्ष्मण सीता ने नमस्कार किया। प्रजाभिश्च नमस्कृतः, और प्रजा ने भी, वहां इतने सारे उपस्थित थे, सभी ने भी दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया सीता राम और लक्ष्मण को। धुन्वन्त उत्तरा संगान पतिं वीक्ष्य चिरागतम्, उत्तरा कोशला माल्यै कीरन्तो नन्दतुर्मुदा। तो जिन्होंने प्रणाम किया, नागरिकों ने, विद्वानों ने, सभी नगरवासियों ने, तो देख ही रहे हैं, किसको देख रहे, वीक्ष्य देखा, पति को देखा, सीता पति ही वे नहीं थे, अयोध्या के भी पति वे थे, पतिम सभी के पति थे, वह उपस्थित जितने भी व्यक्ति थे उन सभी के पति थे राम, उनको देखा, चिर आगतम, बहुत वर्षों के बाद, 14 दिन ही नहीं, 14 वर्षों के उपरांत लौटने वाले उस पति को, अयोध्या पति को सभी ने देखा, कौशल वासियों ने देखा, अयोध्या वासियों ने देखा, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और उत्तर, उत्तर आसंगा, आसंगा उनके जो उत्तरी है, जो वस्त्र है, कुछ तो पूरे पहने जाते हैं, कुछ तो ऐसे ही रखे जाते हैं, उत्तरिया कहते थे, सन्यासी का ये वस्त्र है, और स्त्रियों को थे, पुरुषों के होते हैं, तो उन्होंने वो सारे वस्त्र ले लिए और उसका उपयोग करते हुए क्या करते होंगे, जैसे भांगड़ा डांस ये चलता है वहां पंजाब में, वो उत्तरीय का उपयोग करते हुए नाचते हैं, गुलाल फेंक रहे, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, वस्त्र लिए हैं और नृतुर मुदा नाचने लगे। व्यक्ति नाचता कब है, जब बहुत आह्लाद से जब भरी गया, जी भर गया, तो वो आह्लाद, वो आनंद कैसे प्रकट होता है, नृत्य से प्रकट होता है। कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है, हरे कृष्ण भक्त नृत्य कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अपना हर्ष आनंद फिर समाया नहीं जाता, वो बाहर प्रकट होता है, फिर नृत्य होता है, उस वक्त आत्मा, आत्मा नास्ती, आत्मा नृत्य कर। वैसे ही इन सब अयोध्या वासियों की स्थिति हुई है, पादुके भरत। और अब दूसरा दृश्य है, ये चित्र आप देखे होंगे, कभी कभी राम दरबार भी कहते हैं, या उस, इसमें अलग अलग व्यक्ति है जो अलग अलग चिन्ह, अलग अलग वस्तुएं धारण किए हुए हैं। तो देखिए किसने क्या धारण किया हुआ है, पादुके, पादुका किसके पास है, भरत के पास ही अभी तक पादुका, और पंखा है और चामर है, विभीषण और सुग्रीव, विभीषण याद रखिए, विभीषण लंका के और सुग्रीव कहां के, किष्किंधा के, उन्होंने पंखा और चामर लिया हुआ है, पंखा झलने के लिए हवा, इन दोनों ने। फिर श्वेत छत्रम मरुत्सुतः, और श्वेत सफेद रंग का छाता लिए हैं हनुमान। और भी लोगों ने क्या क्या धारण किया, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के पास धनुष है, सीता भी कुछ धारण की हुई है, सीता के हाथ में कलश है, सीता तीर्थ कमंडलम, तीर्थों का रामायण में लिखा 500 अलग अलग तीर्थों का जल जिस कलश में है उस कलश को धारण की हुई है कौन, सीता। और भी एक दो व्यक्ति है, कौन है ये, एक जामवान भी है, जामवान वृक्षराज, उन्होंने क्या लिया हुआ है, चर्म, उनके हाथ में ढाल है, उनके हाथ में ढाल है, उनके हाथ में ढाल है तो फिर तलवार भी तो किसी के हाथ में होनी चाहिए, तलवार भी है किसी के हाथ में, तलवार, तलवार के मालिक अंगद, ओके, अंगद के हाथ में तलवार है तो जामवान के हाथ में ढाल है, शत्रुघ्न के हाथ में धनुष है, सीता के हाथ में कलश है, हनुमान के हाथ में छत्र है, और सुग्रीव और विभीषण के हाथों में, और कौन बच गए, भरत के हाथ में है पादुका। इस प्रकार सभी ने धारण किया है। अब मिलन हुआ, गले लगाए और सब अभिवादन, नमस्कार, हाउ आर यू वगैरह वगैरह सब हो गया। अब प्रवेश होगा पुरी में, अयोध्या पुरी में, तो हुआ ये सभी ने अलग अलग ये चिन्ह धारण किए हैं, अब प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश भी किए और धीरे धीरे अब राम का राजाभिषेक भी होगा, और हो गया, मैंने कह दिया तो फिर कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। आप घड़ी की ओर देख रहे होंगे तो फिर हो गया, तो के हो गया। हमने अभिषेक उन्हें कर दिया अभिषेक। कैसे किया ये होमवर्क आप लोगों के लिए, तो पता लगवा सकते हैं आप। तो एक दो डिटेल्स है कैसे किया। तो अभिषेक के पहले जटाम निर्मुच्य विधिवत, राम की सारी जटाएं, बाल बनाए, लंबे बाल थे, अभिषेक हुआ श्री राम का, चतुसिंधु जलाधि भी, तो चार समुद्रों का जल लाए उससे अभिषेक, और पवित्र सीता के पास भी वैसे जल था 500 तीर्थों का, उसे अभिषेक किए। एवं कृत शिर स्नान, तो स्नान हुआ, सुवास, तो सुंदर वस्त्र पहनाए, स्रग व्यालंकृत माल्यार्पण हुआ, और अकेले का ही नहीं सीता का भी हुआ, भार्या या भार्या सीता का भी, बभो, ये सब दोनों अब चमक रहे हैं, दोनों सीता और राम समालंकृत हुए हैं सारे वस्त्रों से, अलंकारों से। और फिर हो गया, आ गया। तो राम बने, राजा बने। एक था, कौन था? एक था राजा और एक थी रानी। राजा थे राम और रानी थी। तो अब उन्होंने राज किया कितने वर्षों तक? 11,000 वर्षों तक श्री राम राज करेंगे। त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमो भवत्। वो काल तो था त्रेता युग का, लेकिन बन गया वो त्रेता युग सत्य युग बन गया। राम जब राज कर रहे थे तो त्रेता युग नहीं रहा, वो बन गया सत्य युग बना। अब भी राम राज की स्थापना अगर होगी तो कलयुग का भी क्या बनेगा? सत्ययुग बन सकता है। रामे राजनी धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। तो राजा जब बने, राम जो स्वयं धर्मज्ञ थे, धर्म के ज्ञाता थे, धर्म के रक्षक थे, तो उन्होंने प्रजा को सुखी रखा। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। क्यों? कैसे सुखी रखते थे, कैसे रक्षा करते थे प्रभु अपने प्रजा की? धर्म की रक्षा करते थे। बस धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो, आपकी रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा, मानव जाति की रक्षा, सारे संसार की रक्षा धर्म के रक्षण में है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो राम ने धर्म की रक्षा की, धर्मज्ञ थे, सर्वभूत सुखावह, और सबको सुखी रखा। और उनके राज्य में, और अब कुछ ही श्लोक वचन शेष है इस अध्याय के। वनानि नद्यो गिरयो वर्षानि द्वीप सिंधवः सर्वे कामदुघा आसन प्रजानां भरतर्षभ। तो हे भरतर्षभ, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, सर्वे कामदुघा आसन, सर्वे काम दुघा मही कहते हैं। पृथ्वी कैसी है? सब कामनाओं की पूर्ति करती है, जैसे गाय दूध देती है, तो पृथ्वी भी दूध देती है अपने पुत्र पुत्रियों के लिए। तो उसी पृथ्वी के अलग अलग पूर्जे या अंग, उपांग, सर्व दुघा, सब कुछ दे रहे थे। पांचाकल्प तरु बने थे। तो वनानी, वन देते थे, जो कुछ उनके पास है वो दे देते थे सभी को। अब हम लोग क्या करें वन को? वन को क्या करते हैं हम लोग? वन को काट रहे, इसका बनाते पेपर कागज और फिर उस पर छपते हैं अभिनेताओं के मुखड़े और उसको करते हृदय हम लोग दर्शन। और फिर हमारे दिल का क्या होगा? फिर इस एक तो वर्षा नहीं होगी, वन नहीं होने से क्या नहीं होगा? वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, तो हम लोग जिएंगे नहीं। ऐसी स्थिति आ रही है। ये कर्म किसके कर्म का फल है? हमारे ही कर्म का। लेकिन ऐसे राम के समय नहीं होता था। वनानी फिर नद्यः, नदियां भी काम दुघा दे रही थी। किसको दे रही थी? नदी में क्या होता है? जल की, जल तो जीवन है और जल में आके मछलियां स्वच्छंद विहार किया करती थी राम के समय। अब हम लोग क्या करते हैं? उस जल का फल कहते हैं। मछली क्या है? बंगाल में जाइए, पत्रम पुष्पम फल, हम तो फल ही खाते हैं। ऐसा फल, जल का फल, जलेर फल मछली। तो हम लोग किसी को शांति से चैन से जीने नहीं देते इस कलयुग में। हमारे कारण जल की मछलियां परेशान। गिरयः पर्वत, अब वर्षाणि हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे। द्वीप सिंधवः, सागर और द्वीप, और ये सभी के सभी बने थे, ऐश्वर्यों से पूरित थे और सारा ऐश्वर्य प्रदान करते थे। इससे राम का राज संपन्न ही क्या, समृद्ध था। और क्या था राम राज का? थोड़ा वर्णन, एक दो श्लोकों राम राज का वर्णन अब सुना ही आपने, एक तो श्लोक सुन ही लिया। और क्या? नाधि न व्याधि, अधि नहीं थी, व्याधि नहीं थी, दो है, दो रोग है। शरीर में जब रोग होता है तो उसको कहते हैं व्याधि, और मन में जब रोग होता है, मानसिक रोग, मेंटल, तो उसको कहते हैं आधि। तो लोगों को न तो आधि न तो व्याधि, और कई बार व्याधि से आधि अधिक परेशान करती है। व्याधि आती है और कभी चली भी जाती है, लेकिन जो मन में चिंता है और कहते हम लोगों को वो चिता जो है, चिता जब अंत्येष्टि होती है तो चिता जलाते हैं, तो एक ही बार जलाती है चिता, लेकिन चिंता तो उनको जलाते ही रहती हर रोज। तो इस प्रकार की आधि न तो व्याधि की समस्या राम के जमाने में, राज में नहीं थी। न ग्लानी न दुख शोक भय क्लमाह, तो बूढ़ापा नहीं और किसी प्रकार का कष्ट नहीं, शोक पश्चाताप नहीं, भय डर नहीं, क्लमाह थकावट नहीं। लोग थकते नहीं थे, थकावट, अब जवान थक जाते हैं, मतलब वो बूढ़े होने, जवानी में ही बूढ़े हो जाते, जवानी का अनुभव ही नहीं। कौमारम से जम करके जरा, ऐसा समय। और आश्चर्य की बात, मृत्यु अनिश्चितम नासित, मृत्यु अनिश्चित, मृत्यु की अनिश्चितता का भय नहीं हुआ करता था। अगर आप चाहोगे, आपकी इच्छा है तो मरो, नहीं इच्छा है तो नहीं मरो, से जीते रहो। देखो कैसी व्यवस्था है, राम के राज में ऐसी व्यवस्था थी, इच्छा मृत्यु, इच्छा है तो मरो, नहीं मरना है तो जीते रहो, क्या समस्या। रामे राजने अधोक्षजे, ऐसे अधोक्षज श्री राम के राज की व्यवस्था। और फिर पुनः राम कैसे थे? एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरिता सुचि ही, ये सारे रामायण का वैसे ही है, राम का चरित्र है जिसमें अधिकतर वनवास ही और उसमें कोई विशेष घटना घटी राम के जीवन में, तो रावण ने सीता का अपहरण किया और राम ने एक पत्नी व्रत जो धारण किया था उसको निभाया। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरिता सुचि ही, और स्वधर्म ग्रह मेधियम शिक्षयन स्वयं आचरत, ग्रह मेधियों को गृहस्थों को भगवान ने अपने आचरण से ये पाठ पढ़ाया सिखाया। कौन सा पाठ, कौन सी सीख, कैसा व्रत होना चाहिए? एक पत्नी व्रत और पतिव्रता, पत्नी को तो कहते पतिव्रता, मतलब उसने भी क्या लिया होता है, पतिव्रता पति व्रत, जैसे कई व्रत होते हैं, एकादशी व्रत या ब्रह्मचर्य व्रत, कई व्रत होते हैं, कोई शुक्रवार मंगलवार का ऐसा भी व्रत चलता रहता है महाराष्ट्र में और जगह पर, अलग अलग व्रत होते हैं, वाव कोई संकल्प, तो पतिव्रत पतिव्रता एक पत्नी व्रत राम का, ये औरों को सारे संसार को सिखाया भगवान ने अपने इस लीला से। इसको अगर सीखेगा संसार, संसार में क्रांति होगी, संसार में सतयुग का हम लोग अनुभव कर पाएंगे। उल्टे कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ा, पढ़ने में आया, पुणे के अखबार में लिखा था, सेलिब्रेटिंग डाइवोर्स, डाइवोर्स को क्या मतलब मराठी में हिंदी में, तलाक तो उर्दू शब्द हो गया, घटस्फोट मराठी वाला का तो आप समझ गए, एक तो घटस्फोट, एक तलाक, एक डाइवोर्स, तीन शब्द कहने से फिर आप समझ। तो उसमें लिखा था, वो आर्टिकल का टाइटल था सेलिब्रेटिंग डाइवोर्स सेलिब्रेशन, लोग उत्सव मना रहे हैं, किसमें उत्सव, डाइवोर्स तलाक में या घटस्फोट में, डाइवोर्स का सेलिब्रेशन हमारे देश में हो रहा है, टू फील गिल्टी या कुछ शर्म की बात, या हमने धर्म के कर्म नहीं निभाए, ये वादा नहीं निभाया वगैरह वगैरह, ऐसे अभी सेलिब्रेशन चल रहा है। उसी में जानकारी थी कि हर महीने दिल्ली में कोर्ट में 700 केसेस पहुंच रही है एवरी मंथ, 700 परिवार, 700 पति पत्नी अब अलग होना चाहते हैं, तो कोर्ट की मदद से वे अलग होंगे। तो जो भी उसके लेखक थे उस आर्टिकल के, पता नहीं सुदैव से या दुर्दैव से, मुसलमान ही थे, उनके नाम से पता चल रहा था, तो उनको बड़ी खुशियां हो रही थी कैसे डाइवोर्स हो रहे हैं, और उसका जस्टिफिकेशन ये था कि हम लोग मॉडर्न, तो लिखा मॉडर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है ये, हम लोग प्रगतिशील जो देश है या विकासशील जो जगत है उसमें तो ऐसा ही होता है, अच्छा है। हमारे देश में डाइवोर्स हो रहे हैं मतलब हम लोग अब क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है। अरे ये तो 100 साल पहले, 50 साल पहले या अमेरिका में ऐसा होता था, ए हमारे देश में वैसा जमाना आ गया, हम मॉडर्न हो गए, हम कुछ ज्यादा पीछे नहीं अमेरिका यूरोप के, अभी इस प्रकार कुछ खुशियां वो व्यक्ति मना रहा था उसको लिखते लिखते। सेलिब्रेटिंग डाइवोर्स। अब स्त्रियों के लिए साइकोलॉजिकली इकोनॉमिकली अभी दे आर वेल ऑफ, स्त्रियों के अपने व्यापार है या अपने कुछ नौकरी है, तो पुरुष की क्या आवश्यकता है, क्यों परेशान होना है उस स्त्री पुरुष की जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। राम का आदर्श, अगर कभी आवश्यकता थी इस संसार को तो इस वक्त। इसीलिए हर वर्ष ये दशहरा मनाया जाता है, राम की लीलाओं का स्मरण और उनसे कई सीखने वाली बातें शिक्षाएं हैं। प्रेम्णानुवृत्या शीलेन प्रश्रया वनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तु सीता अहरन् मनः। ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखे हैं अनुवाद। सीता देवी अत्यंत विनित, आज्ञाकारिणी, लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी, भावज्ञा का भावज्ञा। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सके, मोहित, मदन मोहन मोहिनी। राधा अगर कृष्ण को मोहित करती है तो तद्वत् सीता भी राम को मोहित करती है, और एक दूसरों से मोहित होते हैं सीता और राम। तो इस प्रकार संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी ये जो राम विजय उत्सव या विजयदशमी उत्सव के संबंधित जो लीला है उसका श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के 10वें अध्याय में वर्णन किए हैं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी की, अयोध्या धाम की, विजयदशमी महोत्सव की, निधाय गौर प्रेमानंदे। तो उसी के साथ दिवाली, मतलब दिवाली मनाई गई। भगवान जब पहुंचे अयोध्या तो जो वर्णन हम लोग सुन रहे थे, वहां के निवासियों ने कैसे स्वागत किया, खुशियां मनाई, तो दशहरे के बाद वहां से प्रस्थान किए, राम अयोध्या पहुंचे तो दिवाली, दीपावली, खुशियां मनाने का समय। गरीबों